ब्राह्मण साहित्य वेद। वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिनका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत होने के कारण वेदों का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। प्राचीन काल के अध्ययन के लिए रोचक समस्त सामग्री हमें प्रचुर रूप में वेदों से उपलब्ध हो जाती है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद न केवल भारतीय आर्यों की अपितु समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। इस प्रकार यह भारत तथा भारतेतर प्रदेशों के आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म एवं उनकी सामान्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है। विद्वानों के अनुसार आर्यों ने इसकी रचना पंजाब में किया था, जब वे अफगानिस्तान से लेकर गंगा यमुना के प्रदेश तक ही फैले थे। इनमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का अधिकांश भाग देवस्रोतों से भरा हुआ है और इस प्रकार उसमें ठोस ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम मिलती है, परंतु इसके कुछ मंत्र ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं, जैसे एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध अर्थात दशराज्ञ युद्ध का वर्णन आया है, जो भरत कबीले के राजा सुदास के हुआ था। यह ऋग्वैदिक काल की एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। यह युद्ध आर्यों के दो प्रमुख जनों पुरु तथा भारत के बीच हुआ था। भारत जन का नेता सुदास था, जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के इस संघ को परास्त किया और इस प्रकार वह ऋग्वैदिक भारत का चक्रवर्ती शासक बन बैठा। सामवेद तथा यजुर्वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, जबकि अन्य वेद पद्य में है। यह गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इनमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। पृथ्वी सूक्त इसका प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उत्पत्ति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों तथा औषधियों आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है, जो इस बात का सूचक है कि इस समय तक आर्य अनार्य संस्कृतियों का समन्वय हो रहा था तथा आर्यों ने अनार्यों के कई सामाजिक एवं आर्धार्मिक रीति रिवाजों एवं विश्वासों को ग्रहण कर लिया था। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के लिए ऐतरेय तथा कौशित की यजुर्वेद के लिए और यजुर्वेद के लिए तैतरी तथा सतपथ, सामवेद के लिए पंचवेंश, अथर्ववेद के लिए गोपथ आदि। इन ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय, सतपथ, तैतरीय, पंचवेंश आदि प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए हैं। सतपथ में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कोसल, विदेह आदि के राजाओं का नाम उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन है। इसी प्रकार आदरणीय तथा उपनिषदों में भी कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं, यद्यपि ये मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ हैं, जिनका ध्येय ज्ञान की खोज करना है। इनमें हम भारतीय चिंतन की चरम परिणति पाते हैं। वेदांग तथा सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदों की रचना की गई। शिक्षा, 6 वेदांगों की रचना की गई। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञांति करने में सहायक थे। इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। सौत स्रोत गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हम यज्ञ विधि विधानों तथा कर्म कांडो राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। ऋग्वेद से लेकर सूत्रों तक के संपूर्ण वैदिक वांग्मय का काल ईसा पूर्व 2000 से लेकर 500 के लगभग तक सामान्य तौर से स्वीकार किया जा सकता है। महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक दो महाकाव्यों का समय आता है। मूलतः इन ग्रंथों की रचना ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुई थी तथा इसका वर्तमान स्वरूप क्रमशः 2री एवं 4थी शताब्दी ईस्वी के लगभग निर्मित हुआ था। भारत के संपूर्ण धार्मिक साहित्य में इन दोनों ही महाकाव्यों का अत्यंत आदरणीय स्थान है। इनके अध्ययन से हमें प्राचीन हिंदू संस्कृति के विविध पक्षों का सुंदर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इन महाकाव्यों द्वारा प्रतिपादित आदर्श तथा मूल्य सार्वभौम मान्यता रखते हैं। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इससे हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। इसमें यवन देश तथा शकों का नगर कुरु तथा मद्र देश और हिमालय के बीच स्थित बताया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों यूनानी तथा सीथियन लोग पंजाब के कुछ भागों में बसे हुए थे। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इसमें भी शक यवन पारसिक हूण आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। इससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का परिचय मिलता है। राजनीतिक तथा शासन के विषय में तो यह ग्रंथ बहुमूल्य सामग्रियों का भंडार ही है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के विषय में जो कुछ भी इसमें है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतवर्षम यदि हास्ति तदन्त्य यन्ने हास्ति न तक्वचति चित। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इन ग्रंथों का विशेष महत्व नहीं है क्योंकि इनमें वर्णित कथाओं में कल्पना का मिश्रण अधिक है। महाकाव्यों में जिस समाज और संस्कृति का चित्रण है उसका उपयोग उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी ईस्वी में की गई। सर्वप्रथम पार्जिटर नामक विद्वान ने इनके ऐतिहासिक महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया था। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। सर्ग प्रति जगत सर्ग अर्थात जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि, वंश अर्थात ऋषियों तथा देवताओं की वंशावली, मनवंतर अर्थात महायुग और वंशानुचरित अर्थात प्राचीन राजकुलों का इतिहास। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम् चयनम् पुराणम् पञ्चलक्षणम्। इनमें ऐतिहासिक दृष्टि से वंशानुचरित का विशेष महत्व है। 18 पुराणों से केवल 5 में मत्स्य वायु विष्णु ब्रह्मांड भागवत ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। इनमें मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों के भविष्य शैली में कलयुग के राजाओं की तालिकाएं दी गई हैं। इनके साथ सहसुनाग नंद मौर्य सुंग कण्व आंध्र तथा गुप्त वंशों की वंशावलियां भी मिलती है। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण तथा आंध्र सातवाहन वंश के लिए मत्स्य पुराण महत्व के हैं। इसी प्रकार वायु पुराण में गुप्त वंश की साम्राज्य सीमा का वर्णन तथा गुप्तों की शासन पद्धति के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। इस प्रकार पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल के इतिहास से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का परिचय कराते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए तो पुराण ही एकमात्र सूत्र है। धर्मशास्त्र धर्मसूत्र स्मृति भाष्य निबंध आदि को सम्मिलित रूप से धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकाल सामान्यतः ईसा पूर्व 500 से 200 के लगभग निर्धारित किया जाता है। आप स्तंभ बौधायन तथा गौतम के धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। धर्मसूत्रों में ही सर्वप्रथम हम वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन प्राप्त करते हैं तथा 4 वर्णों के अलग अलग कर्तव्यों का भी निर्देश मिलता है। कालांतर में धर्मसूत्रों का स्थान स्मृतियों ने ग्रहण किया। जहाँ धर्मसूत्र गद्य में है वहीं स्मृति पद्य में लिखे गए हैं। स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक मानी जाती है। बुलर के अनुसार इसकी रचना ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा की दूसरी शताब्दी के मध्य हुई थी। अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन, देवल आदि की स्मृतियाँ उल्लेखनीय है। मन स्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। इसके अध्ययन से शुंग कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा का बोध होता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती है। कालांतर में इन पर अनेक विद्वानों द्वारा टीकाएं लिखी गईं। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भारूचि, मेघातिथि, गोविंद राज तथा कुल्लुक भट्ट हैं। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपराक याज्ञवल्क स्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं। इन टीकाओं से भी हम हिंदू समाज के विविध पक्षों के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य। बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर तीन भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह है विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक, जिसमें धार्मिक सिद्धांत अथवा धर्मोपदेश हैं। तथा अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत हैं। इसके अतिरिक्त निकाय तथा जातक आदि से भी हमें अनेकानेक ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। अभिधम्म पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। त्रिपिटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये बौद्ध संघों के संगठन का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा कहानियों का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। कुछ जातक ग्रंथों से बुद्ध के समय की राजनीतिक अवस्था का परिचय भी मिलता है। इसके साथ ही साथ ये समाज और सभ्यता के विभिन्न पहलुओं के विषय में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। दीपवंश तथा महावंश नामक दो पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सूचना मिलती है। पाली भाषा का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पढ़ो अर्थात मिलिंद प्रश्न है, जिससे हिंदी वंश शासक मेनांडर के विषय में सूचनाएं मिलती हैं। इनके अतिरिक्त संस्कृत भाषा में लिखे गए अन्य कई बौद्ध ग्रंथ भी हैं, जो बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों से संबंधित हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तर, दिव्यावदान आदि है। ललित विस्तर में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यावदान से अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। संस्कृत बौद्ध लेखकों में अश्वघोष का नाम अत्यंत ऊंचा है। इनकी रचनाओं का उल्लेख यथास्थान किया गया है। जहाँ ब्राह्मण ग्रंथ प्रकाश नहीं डालते हैं, वहाँ बौद्ध ग्रंथों से हमें तथ्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैन ग्रंथ। जैन साहित्य को आगम अथवा सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य का दृष्टिकोण भी बौद्ध साहित्य के समान ही धर्मपरक है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवते सूत्र, कालिका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनसे अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र, जिसकी तिथि लगभग चौथी सती ईसा पूर्व मानी जाती है, से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। परिशिष्ट पर्वन तथा भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का बड़ा ही रोचक विवरण मिलता है। आचारांग सूत्र जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन करता है। जैन साहित्य में पुराणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें चरित भी कहा जाता है। ये प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश तीनों भाषाओं में लिखे गए हैं। इनमें पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण आदि उल्लेखनीय हैं। जैन पुराणों का समय छठी शताब्दी से 16वीं-17वीं शताब्दी तक निर्धारित किया गया है। यद्यपि इनमें मुख्यतः कथाएं ली गई है, तथापि इनके अध्ययन से विभिन्न कालों की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जिनसे भारतीय इतिहास जानने में काफी मदद मिलती है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जा सकता है, जिसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ कौटिल्य अथवा चाणक्य ने की थी। मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए यह ग्रंथ एक प्रमुख स्रोत है। इससे चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी में कामंदक ने अपने नीति सार में संकलित किया। इस संग्रह में अनेक सिद्धांत हैं। इस संग्रह में 10वीं शताब्दी ईस्वी के राजत्व सिद्धांत तथा राजा के कर्तव्यों पर प्रकाश पड़ता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्याण द्वारा विरचित राज तरंगिणी का है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण दिया गया है। कश्मीर की ही भांति गुजरात से भी अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिनमें सोमेश्वर कृत रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी, मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर कृत प्रबंध कोश आदि उल्लेखनीय है। इनसे हमें गुजरात के चौलुक्य वंश का इतिहास तथा उसके समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार सिंध तथा नेपाल से भी कई इतिवृत्तियां मिलती हैं, जिनसे वहां का इतिहास ज्ञात होता है। सिंध की इतिवृत्तियों के आधार पर ही चचनामा नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत सुरक्षित है। मूलतः यह अरबी भाषा में लिखा गया तथा कालांतर में इसका अनुवाद खूफी के द्वारा फारसी भाषा में किया गया। अरब आक्रमण के समय सिंध की दशा का अध्ययन करने के लिए यह सर्व प्रमुख ग्रंथ है। नेपाल की वंशावलियों में वहां के शासकों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है, किंतु उनमें से अधिकांशतः अनैतिहासिक हैं। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्षिक, गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पाणिनि तथा कात्यायन की व्याकरण ग्रंथों से मौर्यों के पहले के इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था पर प्रकाश पड़ता है। पाणिनि ने सूत्रों को समझाने के लिए जो उदाहरण दिए हैं, उनका उपयोग सामाजिक आर्थिक दशा के ज्ञान के लिए भी किया जा सकता है। इससे उत्तर भारत के भूगोल की भी जानकारी प्राप्त होती है। गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथापि इससे कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा तथा कुसुमध्वज या पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना मिलती है। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र नाटक शुंग कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का विवरण प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष कृत बुद्ध चरित, बाणभट्ट का हर्ष चरित, लाखपति का गौड़ाहु, बिल्हण का विक्रमांग देव चरित, पद्मगुप्त का नवशासांक चरित, संध्याकर नंदी कृत रामचरित, हेमचंद्र कृत कुमार पाल चरित या द्वात्रय काव्य, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय आदि का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। बुद्ध चरित में गौतम बुद्ध के चरित्र का विस्तृत विवरण वर्णन हुआ है। हर्ष चरित से सम्राट हर्षवर्धन के जीवन तथा तत्कालीन समाज एवं धर्म विषयक अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। गौड़ाहों में कन्नौज नरेश यशोवर्मन के गौड़ नरेश के ऊपर किए गए आक्रमण एवं उसके वध का वर्णन है। विक्रमांग देव में कल्याणी के चालुक्य के नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णित है। नवशासांक चरित में धना धारा नरेश मुंज तथा उनके भाई सिंधुराज के जीवन की घटनाओं का विवरण है। रामचरित से बंगाल के पालवंश का शासन, धर्म एवं तत्कालीन समाज का ज्ञान होता है। आनंद भट्ट कृत बल्लाल चरित से शेर वंश के इतिहास और संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। कुमार पाल चरित में चौलुक्य शासकों जय सिंह सिद्धराज तथा कुमार पाल का जीवन चरित तथा उनके समय की घटनाओं का वर्णन है। पृथ्वीराज विजय से चहमान राजवंश के इतिहास का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त और भी जीवनियां हैं, जिनसे हमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिल जाती है। राजशेखर कृत प्रबंध कोश, बाल रामायण तथा काव्य मीमांसा, इनसे राजपूत युगीन समाज तथा धर्म पर प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के समान दक्षिण भारत से भी अनेक तमिल ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिनसे वहां शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के काल का इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान होता है। तमिल देश का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से ज्ञात होता है। नंदिकलम्बकम, कलिंगत्तुपर्णी, चोल चरित आदि के अध्ययन से सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव तथा चोल वंशों के इतिहास एवं उनकी संस्कृति का ज्ञान होता है। कलिंग तुपड़ी में चोल सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम की कलिंग विजय का विवरण सुरक्षित है। तमिल के अतिरिक्त कन्नड़ भाषा में लिखा गया साहित्य भी हमें उपलब्ध होता है। इसमें महाकवि पंप द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय जो भारत में लिखा गया तथा रत्नकृत गदा युद्ध विशेष महत्व के हैं। इनसे चालुक्य तथा राष्ट्रकूटों के वंशों के इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ता है।